वेलकम बैक तमाम सामीन जो हमें सुन रहे हैं 770 AM डायल पर प्रोग्राम साजो आवाज। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और हमारे साथ गर्मा गर्म खबरें लेकर स्टूडियो में मौजूद हैं शाजिया मलिक साहिबा। और अब तक की जब वो बोलेंगी नहीं मुंह से उस वक्त तक की ताजा तरीन है, लेकिन जब वो बोल देंगे तो उसके बाद वो बासी खबरें हो जाएंगी। तो आइए शाजिया मलिक साहबा को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।
WS मेरे अजीज हम वतनों ठीक हो?
अल्हम्दुलिल्लाह आपसे गई है, आपसे गई। आपका सॉफ्टवेयर सही अपडेट हुआ?
सही हो गया ना? हाँ, वो असल में तो मैं ये सोच रही थी कि कौनी साहब जो हैं उनकी तीन ही सीटें शॉर्ट हैं, तो मैं तुम और जीशान चले जाएं अगर थे साड़ी गल हो गई।
अच्छा
हाँ, साड़ी गल हो गई करनी साहब,
तीन उनको सीटें चाहिए,
तीन ही सीटें चाहिए उनको मेजोरिटी के लिए। मैं तुम और जीशान चले जाएं तो उनका वो कोरम भी पूरा हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन कोई करप्शन वगैरह करके कोई मिलियन डॉलर कमा लेंगे।
देखा सामने और नाजरीन, कुछ नहीं काम है,
पाकिस्तानी है ना हम।
ये फर्क होता है बी पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। देखा आपने, मान लिया ना? लेकिन बात आपकी वैसे समझ आ रही है,
समझ आ रही है ना? मैं कह रही हूँ सारी गल हो गई।
तो फिर कारनी साहब को फोन करें?
हाँ कर लिए मैं।
अच्छा कर लिया, अच्छा गल हो गई,
गल हो गई।
अच्छा, कारनी साहब से गल हो गई।
असल में जी मैं आपको बताती हूँ उसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड ये है कि जिस वक्त मैं इधर इस्लामाबाद में काम करती थी, तो वहां पे ना कभी कोई जो एक अखबार था नवाए वक्त ग्रुप के साथ था, एक आपको पता है कि हमेशा ही जो हुकूमत होती है उसके साथ होता है, तो वो जो जिस ग्रुप में मैं थी वो उनको लगता था कि भाई वो जरा थोड़े एंटी मुशरफ सारे हैं, तो वो कभी कोई ऐसी खतरनाक खबर आ जाती थी तो मेन डेस्क पे जब वो रिपोर्टर लाके अपनी स्टोरी देता था ना, तो वो कहते थे, सर बैठ के पकड़ के बैठ जाते थे, भाई ये तो हम नहीं छाप सकते, ये तो हम सब मुश्किल में आ जाएंगे, मुशरफ साहब ने क्लास ना कहीं आता। हालांकि मुशरफ साहब वैसे कहते कुछ किसी को कुछ नहीं थे ऐसा, लेकिन बहरहाल जी वो कहने लगे जी के, तो वो जो मेन डेस्क वाले होते थे ना वो कहते थे बेचारे कि भाई ये तू क्या स्टोरी लेकर आ गया है, ये मुश्किल में डालेगा। तो फिर वो लड़का आगे से कहता था, ओ जी छापो छापो साड़ी गल हो गई है। यानी कि वो क्लीयरेंस लेके आया,
क्लीयरेंस ले ली उसने,
क्लीयरेंस लेके वो आया होता था, तो वो कहता था जी छापो जहर साड़ी गल हो गई है।
तो आपकी गल हो गई, कारनी
साड़ी गल भी हो गई है,
कारनी साहब आपकी गल हो गई,
गल हो गई, असी तीनों जाने हैं बस।
देखिए आपकी गल से ऐसा ना हो कि आधे रास्ते में कारनी साहब बोले आप कौन है। तो जो मेरा मैसेज वाला जो सिलसिला है ना, कम से कम देखे उनसे मैं मिला नहीं।
अच्छा,
लेकिन मेरे मैसेजिंग मैं आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी कर देता हूँ और कारनी साहब को भी कर देता हूँ, वो सब मैं चाहता हूँ कि सिलसिला बना रहा, ऐसे नहीं बोले कि जी आप कौन। अच्छा, मैं नहीं चाहता कि कोई आप कौन वाला सिलसिला हो। अभी दबदबा बना हुआ है मेरा।
अच्छा,
तो कारनी साहब को मैसेज करता हूँ, वो कहते हैं यस बॉस।
अच्छा,
तो वो सब सिलसिला मैं नहीं चाहता कि आपकी जो वो गल बन गई है कि नहीं बन गई है, ऐसा हो कि बाद में जो है ये मामला खराब हो जाए और वो हमें ही बोल देंगे जनाब आप अपनी गल खुद नहीं, वो आप एक और वर्ड हो, गल मुक गई है। मेरे ख्याल से उसको अपोजिट सही बोला मैंने, है गल बन गई है का गल मुक गई, मुक गई है, मुक गई है, तो गल मुक गई है। जैसे कि गल मुक गई है बहुत सारे हमारे पॉलिटिशियंस की कल, और जिसमें NDP नंबर वन है, और जगमीत सिंह साहब ने जो है वो स्टेप डाउन भी कर दिया जनाब, उन्होंने कहा कि अब मैं इससे पीछे हट रहा हूं और नया लीडर जो है NDP का देखते हैं आने वाले वक्त में कौन सा जो है वो नॉमिनेट होता है और फिर आगे लेके NDP को चलता है। इस जगह पीयर पॉलिस साहब जो है वो भी अपनी सीट हार चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई अनाउंसमेंट, मैं अब तक जब तक ताजा तरीन खबरें तो आपके पास होती है, तो अब तक तो कोई अनाउंसमेंट आई है कि कोई मैं हट रहा हूं कोई और लीडर आ जाएगा?
तो उन्होंने अनाउंस नहीं किया है, लेकिन जाहिर है अभी तो
अब तक नहीं
बैठेंगे ना,
बैठेंगे बातचीत
करेंगे, जैसे
लोग डिसाइड करेंगे।
अब जो है वो ट्रूडो साहब भी गए थे तो एकदम से तो नहीं चले गए थे, लोग उनको कब से कहते, फिर कॉकस के साथ बैठे, कॉकस ने कहा कि नहीं अगर आप हमारे साथ रहे तो फिर पार्टी ही हारेगी, तो आपको तो अब तो अभी तो कल ही इलेक्शन खत्म हुआ है, तो वो अभी एक डेढ़ हफ्ता लेंगे, बैठेंगे कॉकस से बात करेंगे, अगर तो कॉकस ने कहा कि नहीं अब आप हमारा लीडर नहीं रह सकते क्योंकि आप तो अपना खुद का ही सीट हार गए हैं तो आपको जाना ही पड़ेगा, तो फिर वो कहेंगे अच्छा ठीक है जी मैं उस वक्त तक करूंगा जब तक इंटरम, जैसे कि कल जगमीत सिंह साहब ने फोन किया वो बताया ना कि मैं अब स्टेप डाउन कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आज से ही इमीडिएटली वो जा रहे हैं, नहीं अभी वो रहेंगे जब तक कि इनके इलेक्शंस नहीं हो जाते, इंटरिम लीडर नहीं आ जाता, उस वक्त तक ये रहेंगे, जब इंटरिम लीडर आ जाएगा उसके बाद फिर
उसके बाद फिर चले जाएंगे। हाँ। देखते हैं, एक
तो स्टेप डाउन का मतलब ये होता है कि उसका ये नहीं होता लेकिन कि एक सेकंड में मैंने कल ही छोड़ देना है बस,
क्योंकि मेरा ये कि अगर वो कहते हैं कि मैं स्टेप डाउन नहीं करता, मुझे समझने के लिए बात इस वक्त कर रहा हूं ताकि लोगों को भी इस बात का अंदाजा हो, एक लीडर आपकी पार्टी का जो भी जिस पार्टी का वो अब ऑफिशियल अपोजिशन पार्टी तो डिक्लेयर हो गई, ठीक हो गया, अब उनका लीडर पार्लियामेंट में नहीं है। तो जो पार्लियामेंट में जैसा होता है कि अपोजिशन लीडर हमेशा आपने देखा होगा कि पियर पॉलिस साहब और जब जस्टिन ट्रूडो साहब भी थे तो वो उनकी बात आपस में होता था, जैसे अपोजिशन लीडर का रोल होता है, एक प्राइम मिनिस्टर है अपने वक्त का। तो अब पियर पॉलिस साहब नहीं होंगे अगर और स्टेप डाउन नहीं करते वन सिनेरियो, तो पार्लियामेंट में कोई वो
रह ही नहीं सकते ना, वो रह ही नहीं सकते।
अब तो पार्लियामेंट में तो नहीं आएंगे, लेकिन अपोजिशन पार्टी उनकी वहां मौजूद तो है ना।
नहीं, लेकिन उनके उन्होंने तो अपना खुद का सीट भी लूज कर दिया है ना, तो एज अ रिजल्ट उनको पार्टी हेड रहने नहीं देगी अब, है ना। जिसने जीते हैं ना अब वोट्स जो है सबसे ज्यादा वो देखेंगे।
लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रोविंस में जब हुआ था, अभी प्रोविंस के इलेक्शन में जो हमने देखा कि बॉनी साहिबा जो है वो अपनी सीट लूज कर गई, लेकिन उन्होंने पार्टी की लीडरशिप से रिजाइन नहीं किया। हाँ। वो बाहर बैठ के जो है वो पार्टी चला।
नहीं, प्रोविंस और फेडरल डिफरेंट होता है।
अच्छा, खैर मुझे यहाँ पढ़ना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा मुझे।
हाँ,
क्योंकि अगर वो पार्लियामेंट में नहीं आ रहे हैं, जाहिर है जैसे आपने भी बताया, हम सबने कल देखा कि वो सीट हार गए, तो अब वो पार्लियामेंट का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन पार्टी के लीडर हैं, तो अब उनकी ऑफिशियल पार्टी जो असेंबली में होगी, पार्लियामेंट में,
हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए एक अपना पार्टी हेड ढूंढेगी और वो फिर जो है
वो उसको रन करेगा।
हाँ।
वो लीडर
ऑफ
तो वो जो जीत गए एंड्रयू साहब, वो कहीं उनका नाम आता है।
एंड्रयू शियर जो है वो भी जीते हैं और भी कुछ लोग हैं, लेकिन एंड्रयू शियर है तो बड़े अच्छे बंदे, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी चाहे तो उनको
ना, क्योंकि पहले तो उनसे पार्टी किया,
उनको हेड बनाया था तो वो चल नहीं रही थी ना पार्टी, तो अब मुझे लगता है कुछ और कोई एक डायनेमिक बंदा जो है उसको सामने लेकर आएंगे,
एटलीस्ट विद इन द पार्लियामेंट,
विद इन द पार्टी अब वो ढूंढेंगे कौन ऐसा कोई है फायरी जो कि हु कैन स्टैंड अगेंस्ट यू नो मार्क कार्नी, और फिर वो कर सकता है, तो इस तरह से फिर वो ऐसे करके
चले जी।
हाँ, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन तो चाहिए ना,
चाहिए
हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो ऐसा है।
चले जी, हमारे तमाम सामईन को नाजरीन को खबरें सुनाइए, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर जो है बहुत ही हाई हो गया।
हाँ जी, ठीक है। अच्छा जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय टैप टैप सेंड, बड़ी जबरदस्त किस्म की ये जनाब जो है वो है ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप प्रोमो कोड डालिए रेडियो 20 और आपको जो एडिशनल $20 मिलेंगे जब आप पहली बार $200 अपने प्यारों को घर भेजेंगे, यानी कहीं पे भी आपने भेजना है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जहां कहीं भी आप भेजना चाहते हैं आप इसके भेजें, तो बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। डाउनलोड करें, अपनी डिटेल्स डालें, जहां पे भेजना है उनकी डिटेल्स डालें और भेजें, और बहुत क्विकली जो है ये पहुंच जाएंगे आपके पैसे वहां पे। और अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो आप विलेज टेस्ट जाइए, दो रेस्टोरेंट्स हैं फैसल चटर साहब के, एक मिसिसागा में और एक ओकविल में, तो आप जाके वहां पे एंजॉय का मजा ले सकते हैं। और अगर आपके दांत खराब हो गए हैं तो आप डॉक्टर नाजिया रहमान के पास जाएं, उनके भी दो लोकेशंस हैं, एक मिसिसागा रोड पे है और एक रिजवे प्लाजा में है, तो आप कहीं पे भी जाके उनसे दांतों की सुविधाएं ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं आपके ट्रक का हेल्थ अच्छा रहे तो आप क्विक ट्रक ल्यूब के पास जाओ और विद इन 15 मिनट्स वो सारा देख वेख के, ऐसे एक्सपर्ट्स हैं उनके पास मैकेनिक्स के, वो देख के आपको इमीडिएटली बता देते हैं कि इसमें क्या ठीक करने वाला है, और एक गेट से एंटर हो दूसरे से आप निकल जाओ। साथ ही अगर आपको अमेरिका जाना है आप अमेरिका जा सकते हो, तो बहुत ही अच्छी उनकी नैपनी की जो लोकेशन है वो है। और अगर आपको भी पैसे ढेरों बचाने हैं और आमिर की तरह यूरोप के टूर पे जाना है 1775 अगर आप चाहते हैं आपका बच जाए, तो फिर आप जो है जाइए उनके पास राजा बादशाह के पास, ऑल स्टेट के साथ होते हैं, आपको होम और ऑटो इंश्योरेंस पे बहुत ढेरों पैसे बचा के दे सकते हैं। अच्छे कपड़े इटालियन अगर आपको जो है फैब्रिक पसंद है, उसके हाई एंड कपड़े चाहिए, तो स्पीयर एंड मके पे आप जाइए, उनका नया लोकेशन जो है अभी ब्रिटानिया रोड पे है, और बहुत अच्छे आपको जो है हाई एंड आपको कपड़े वहां पे मिलेंगे। और अगर आपको बंडल डील्स चाहिए है इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे आप घर चेंज कर रहे हैं या आपके इलेक्ट्रॉनिक्स घर में बहुत ही पुराने हो गए हैं और आप कहते हैं कि हमको नया चाहिए अब, तो आप सुल्तान भाई के पास जाएं, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव वेस्ट पे है, तो आप सुल्तान भाई को कॉल करें और उनसे अच्छे अच्छे कैप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हैं आप, ठीक है जी, तो आप जाइए। ओके जनाब, अभी तक तो हमारे पास खबरें आ रही थी कि जी अभी वो चल रही है जो काउंटिंग थी वो चल रही है, लेकिन अभी जो हमने हिसाब लगाया है कि 168 तक था सुबह तक और 169 अब हो गया है लिबरल्स का, 144 जो है वो कंजर्वेटिव्स का है, 22 जो है ब्लॉक की बैकवा का है, 7 जो सीट्स है वो उनका है ये जो है एनडीपी और 1 जो है ग्रीन, तो 343 ये पूरे सीट्स हो गए हैं, तो विच मींस के 3 जो सीट्स हैं वो शॉर्ट है मेजोरिटी से, 172 अगर आता तो इनको मेजोरिटी मिलती। अच्छा जनाब, मार्क कार्नी साहब जो है उनकी लिबरल पार्टी जो है उसने फोर्थ टाइम लिबरल पार्टी ने कंजेकेटिव विन जो है वो जीता ہے. اور مارک کارنی صاحب کی اگر آپ کل سپیچ سن رہے تھے تو انہوں نے جو ہے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر کسی کو ریپرزینٹ کریں گے کینیڈا میں, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کہ کینیڈا جس جو کوئی بھی کینیڈا کو ہوم بولتا ہے میں اس سب کو کروں گا. اور بہت ہی انرجائز قسم کا کراؤڈ تھا. پہلے تو ان کی وائف آئے اور پھر انہوں نے جو ہے میاں صاحب کو بلایا, یعنی کہ مارک کارنی صاحب کو, اور وہاں پہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ سپیچ دیا. اور انہوں نے کہا جی کہ میں بالکل اپنی ساری جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں کینیڈینز کے لیے وہ ہم کریں گے, اور یہ جو ڈویژنز ہیں ہمارے بیچ میں اور یہ جو پچھلے زمانے سے چلے آ رہے ہیں ان کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ انہوں نے بہت زیادہ کانگریچولیٹ کیا اپنے جو دوسرے پارٹی لیڈرز تھے, جیسے کہ پی اے پالیو اور جگمیت سنگھ اور بلاک کی بیکوا کے فرینکوا بلانشے, ان کو انہوں نے کہا جی کہ دے فاٹ دا کیمپین ویری ویری ویل اور آئی تھینک دیم فار دیئر سروس ٹو کینیڈا. اس کے بعد وہ ذرا تھوڑے سے ہنسے ایسے نا مزاق سے, انہوں نے کہا جی کہ میں ڈیفینیٹلی بروس فینجوئے کو ملنا چاہتا ہوں جس نے کہ جو ہے وہ پی اے پالیو صاحب کو, یہ لبرل کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے پی اے پالیو صاحب کو کالٹن کی جو ان کی رائڈنگ تھی جہاں سے کہ یہ 20 سال سے ریپرزینٹ کر رہے تھے اس رائڈنگ کو, اس سے یہ ہارے تھے. اور انہوں نے کہا جی کہ جو یہ سارا کچھ ہم کو تھریٹ دیا جا رہا ہے ان کو بھی ہم دیکھیں گے, اور یو ایس جو ہے وہ ہمارا لینڈ, ہمارے ریسورسز, ہمارا واٹر اور ہمارا کنٹری لینا چاہتے ہیں اور یہ آئیڈل تھریٹس نہیں ہیں, لیکن ہم جو ہے وہ یعنی کہ اپنی سوورینٹی پہ ہمارا کوئی سودا نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کہ ٹرمپ صاحب ٹرائی کر رہے ہیں ہم کو ون اوور کرنے کے لیے, ہم کو اون کرنے کے لیے, لیکن ہم کبھی کبھی ایسا نہیں ہونے دیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ اب کارنی صاحب ظاہر ہے کہ اور تھوڑے دنوں میں اپنے کیبنٹ کی اناؤنسمنٹ کریں گے اور پھر یہ لوگ جو ہے واپس ہاؤس آف کامنز میں بیٹھیں گے, کچھ بات چیت کریں گے. تو پہلا تو مسئلہ یہی رہے گا ان کے لیے کہ جی یہ جائیں اور ٹرمپ صاحب کے ساتھ بات کریں, کیونکہ آپ کو پتا ہی ہے کہ الیکشن سے پہلے بھی ان کی ایک فون کال جو ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہوئی تھی اس میں دونوں نے اگری کیا تھا کہ بھئی الیکشنز ہو جائے پھر ہم دونوں مل کے بیٹھیں گے. تو آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پتا چلا ہے کہ انہوں نے ٹرمپ صاحب سے بات کیا ہے اور ابھی جو ہے تھوڑا سیٹل ہو جائیں گے تو باتوں چیزوں کو آگے لے کے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جب ان کی کل یہ جیتے ہیں تو یہ جو ہیں بہت سارے جو پریمیئرز تھے انہوں نے, جیسے کہ کیوبیک کے پریمیئر فرینکوا لگا, نوناوٹ کے ایلی گاکاٹ, نیو برانزوک کے سوزن ہالٹ, اینڈریو فیوری آف نیو فاؤنڈ لینڈ اینڈ لیبراڈور, اونٹیریو کے ڈک فورس, ساروں نے بہت ساری ان کو مبارک دی. اس کے علاوہ دنیا میں بھی لوگوں نے بہت مبارک دی, انکلوڈنگ پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں شہباز شریف صاحب, اور انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے جی کہ ہم بات چیت ان کے ساتھ ٹرمپ صاحب کے ساتھ کریں گے بیٹھ کے ٹریڈ سیکیورٹی اور ان چیزوں پہ. پی اے پالیو صاحب جو ہے جی انہوں نے جیسے کہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ کارلٹن کی جو ان کی سیٹ تھی اس سے وہ ہار گئے تھے, اور پھر بھی بہت بڑا چیئرنگ سپورٹرز جو تھے وہ وہاں پہ تھے اور انہوں نے وہاں پہ ان سے بات چیت کی اور انہوں نے کہا بہت مبارک دی ان کو کارنی صاحب کو, اور لوگوں نے وہاں پہ بو کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور انہوں نے کہا جی کہ لوگ بڑے اداس تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لیے, یہ جو ہے موقع ہے سیلیبریٹ کرنے کا کیونکہ اوور 20 سیٹس ہم نے جو ہے وہ جیتے ہیں, اور جو کہ پارٹی کو 1988 کے بعد اتنی بڑی وکٹری جو ہے اس کے پاس آئی ہے. انہوں نے کہا جی کہ NDP اور لبرلز جو ہے ان کے پاس تو اتنے سیٹس نہیں ہیں تو وہ ان کو فارم کرنا پڑے گا کوئلیشن گورنمنٹ, اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے جو بھی ہمارے پرومسز ہیں جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کنٹینیو کریں گے. انہوں نے کہا کہ جو ہے آپ بالکل ڈس اپوائنٹڈ ہیں میں دیکھ سکتا ہوں, لیکن ہم چینج لانا چاہتے ہیں اور چینج لانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور اٹ ٹیکس ٹائم. تو جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ کنزرویٹو پارٹی نے 144 سیٹس لیے. پھر جی جگمیت سنگھ صاحب بھی بہت زیادہ ڈیجیکٹڈ فیل کر رہے تھے. کل تو جب وہ آئے تو بار بار پانی پی رہے تھے, ان کو رونا آ رہا تھا تو وہ اپنے آنسو روکنے کے لیے, لیکن ان کی وائف جو ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی وہ جو تھی وہ رو پڑی تھی, اور انہوں نے کہا جی کہ میں ریزلٹس تو جو بھی ہے لیکن میں ابھی بھی بہت زیادہ ہوپ فل ہوں, ہم جو ہماری یہ موومنٹ ہے ہم یہ چلاتے رہیں گے. اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہم ہمیشہ ہوپ دیتے ہیں اوور فیئر, آپٹیمزم اوور ڈسپیئر, یونٹی اوور ہیٹ, اینڈ وی آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر. اور ان کی جو برنبی سینٹرل کی جو رائڈنگ تھی اس سے یہ خود بھی ہار گئے تھے اور اب ظاہر ہے پارٹی لیڈر نہیں رہ سکتے تھے, اور ویسے بھی جب یہ جو ہے ان کی اب پاس صرف 7 رہ گئی ہیں سیٹس تو یہ تو اب آفیشیل जो होते हैं पार्टी स्टेटस वो भी खो बैठे हैं, तो इसलिए इन्होंने कहा जी कि मैं स्टेप डाउन कर रहा हूं। इन्होंने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया कर्णी साहब को उनकी जीत के ऊपर। ब्लॉक की बैकवा जो है उसने भी तकरीबन 10 सीट्स जो हैं वो लूज किए हैं, और ये सारा जो सारे का सारा गेन्स है ये आए हैं लिबरल के हाथ में। रेजोल्यूशन से पहले इनके पास 33 सीट्स थे ब्लॉक की बैकवा के पास, यानी कि मोर देन एनडीपी, लेकिन अभी जो है ये 22 सीट्स ही जीत सके हैं। फ्रांकुआ ब्लाशे जो है वो अपना सीट तो जीते हैं, और इसी तरह जो ग्रीन पार्टी की एलिजाबेथ मे है वो अपनी सीट जीती है, लेकिन जो उनके लीडर थे दूसरे वो जो थे अपनी सीट से हार गए थे। तो यह था जनाब कल रात का सारा जो है सारी दास्तान। इलेक्शंस कनाडा जो है उसने जी ये जो मैराथन काउंटिंग थी स्पेशल बैलेट्स के ऊपर, ये कुछ तो राइडिंग्स पे रह गई थी लेकिन अब इन्होंने बिल्कुल खत्म कर ली है। तो लिबरल्स ने जो है वो सिर्फ अब 3 शॉर्ट ऑफ मेजोरिटी है, 169 उनके पास सीट्स हैं। मेजोरिटी गवर्नमेंट के लिए आपको पता ही है 172 सीट्स चाहिए है, और जो है ये लिबरल्स ने कहा जी कि हम अपना काम जो है वो जारी रखेंगे। खासतौर पे इन्होंने जो सीटें 905 एरिया में गुमाई हैं या साउथ वेस्टर्न ऑन्टेरियो में गुमाई हैं उसकी वजह से इनको मुश्किल है, और ये 905 एरिया के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम कंजर्वेटिव जो है उन्होंने इन रोड्स जो है वो बनाए हैं, लेकिन ट्रोनो के अंदर अभी भी ये इनलेस जो है वो नहीं कर सके हैं। ओवर 67% एलिजिबल वोटर्स जो थे उन्होंने वोट कैस्ट किए थे, जो कि बनते हैं 19.2 मिलियन पीपल, और रिकॉर्ड 22 ऑफ 65 पंजाबीज जो खड़े हुए थे वो जीते हैं। इसमें से जो हैं जो कि साउथ एशियन डिसेंट के हैं उसमें से 15 जो हैं वो मुसलमान भी हैं। अगर हम ब्रैम्पटन की बात करें जहां पे कि हम लोग ज्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड हैं, मैं ब्रैम्पटन और मिसिसागा में, ब्रैम्पटन से जो इनकम्बेंट थी ये सोनिया सिद्धू फ्रॉम ब्रैम्पटन साउथ वो जीती हैं। मनिंदर सिद्धू जो ब्रैम्पटन ईस्ट में थे वो जीते हैं। रूबी सोहता जो कि अब नई जो बन गई थी बड़ी राइडिंग, पहले तो थी ब्रैम्पटन नॉर्थ, अब ये बन गई थी ब्रैम्पटन नॉर्थ कैलेडन, काफी बड़ा एरिया था, वहां से बहरहाल रूबी सोहता जो है फिर से जीती है। शफकत अली भी जो वो नई जो क्रिएट की गई थी राइडिंग ब्रैम्पटन चिंकूजी पार्क, वहां से वो जीते हैं। हेल्थ मिनिस्टर थी हालांकि, और ब्रैम्पटन वेस्ट को रिप्रेजेंट करती थी कमल खेरा, वेरी सरप्राइजिंगली वो हार गई अपनी राइडिंग से, और जो कंजर्वेटिव पार्टी के जो थे मेंबर अमरजीत गिल वो वहां से अब जीते हैं। उसके बाद ब्रैम्पटन सेंटर जो है उनसे भी बिल्कुल एक नई 23 इयर्स ओल्ड बच्ची जो है अमनदीप सोडी, उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के तरन चाहल जो काफी स्ट्रांग चल रहे थे उनको हराया और वो जीती हैं। इसी तरह यासर नकवी जो हैं वो अपने ओडवा सेंटर से जीते हैं। सलमा जाहिद जो हैं स्कारब्रो सेंटर डॉन वैली ईस्ट से वो जीती हैं। इकरा खालिद जो हैं मिसिसागा एरन मिल से जीते हैं, और कल हम आपको और भी दूसरे जो ऑल टुगेदर 15 जो जीते हैं मुसलमान उनकी हम आपको डिटेल्स बताएंगे। प्रीमियर डग फोर्ड साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि मैं बिल्कुल क्रिटिसिज्म के ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं यूनिटी के ऊपर फोकस कर रहा हूं, क्योंकि कंजर्वेटिव एमपी जो हैं और फॉर्मर पीसी जो एमपीपी हैं उन्होंने इनके ऊपर बहुत ज्यादा इल्जाम लगाया था कि एलिजली इन्होंने सेबोटाज किया है फेडरल कंजर्वेटिव को। इन इंटरव्यू जमील जवानी जो हैं उन्होंने कहा था कि उन्होंने मीडिया को बताया था कि आफ्टर इनकी जो जब ये विन करके बोमनविल ओशवा नॉर्थ से, तो उन्होंने एक्यूज किया था फोर्ड साहब को कि वो लिबरल्स को बहुत ज्यादा हाइप कर रहे हैं। फोर्ड साहब ने बहरहाल कहा जी कि मैं इन चीजों के बारे में जो है बिल्कुल वरिड नहीं हूं, मैं तो जो है ऑन्टेरियो के लिए वरिड हूं, और उन्होंने डॉज भी किया क्वेश्चन उनसे जब बार बार पूछा गया कि आपकी पार्टी के बीच में बहुत सारे रिफ्ट हैं, तो वो कहते हैं जी आई गिव टू हूट्स अबाउट दीज पोलिटिकल स्ट्राइप्स, और वो कहते हैं जी आई एम रेडी टू वर्क विद पीएम टू प्रोटेक्ट कनेडियंस। उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया कर्णी साहब को, और उन्होंने कहा कि कर्णी साहब मैं होप करता हूं कि अपने तमाम जो उन्होंने प्रोमिसज किए हैं प्रोविंसेज और टेरिटोरीज के लिए वो पूरे करेंगे, तो हम देखना चाहेंगे। उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन जो है बहुत ही क्रूशल टाइम पे आया है ऑन्टेरियो के लिए, हमारी फैमिलीज के लिए, वर्कर्स के लिए और बिजनेसेस के लिए, तो हम चाहते हैं कि ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो है इन लोगों को प्रोटेक्शन दे और रेड टेप काटे, ताकि यानी कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसको थोड़ा सा क्लैम्प डाउन करें ताकि इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो हो सके, ज्यादा कंपटीशन बढ़ सके और हम सेल्फ रिलायंट हो सकें और हम सिर्फ टैरिफ्स की वजह से डर के ना रहे, क्योंकि और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन हमको अपने बीच में जो बैरियर्स हैं वो खत्म करने की जरूरत है। आपको पता ही है कि इलेक्शन से पहले भी फोर्ड साहब की मुलाकात कर्णी साहब के साथ हुई थी और उन्होंने अपनी सारी जो बातचीत उनको बताई थी, और जैसे कि कर्णी साहब ने भी कल रात कहा कि मैं सबका प्राइम मिनिस्टर हूं, तो मुझे लगता है कि ये सबके साथ मिलकर अब काम करेंगे। व्हाइट हाउस जो है जी उसने आज बहुत ही स्लैम किया अमेजोन को, क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी जिसमें के बताया गया कि वो कंज्यूमर्स को बताएंगे कि किस तरह जो ट्रम्प साहब के टैरिफ्स है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इनके प्राइस हाइक में, जो शायद ये अभी आने वाले दिनों में शो करेंगे। इसके लिए व्हाइट हाउस ने कहा कि ये बहुत ही हॉस्टाइल और पॉलिटिकल एक्ट है और ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अमेजोन के पास जब ये बात पहुंची तो उन्होंने इस रिपोर्ट को बिल्कुल डिनाई किया, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ट्रम्प साहब जो है अपना अब 100 डेज मार्क कर रहे हैं और एक पब्लिक रैली करेंगे इस सिलसिले में मिशिगन के अंदर। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बैसेट जो है उन्होंने कहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो देखना चाहती है उन कंपनीज को जो कि रीलोकेट करना चाहते हैं यूएस के अंदर, ताकि ये जितने भी इनके जो एक्सपेंसेस हैं फैक्ट्रीज और इक्विपमेंट परचेज के फ्रॉम देयर टैक्सेस वो भी खत्म हो सकते हैं। तो इस होते हुए जब वो कह रहे हैं कि हम इतने अच्छे इंसेंटिव्स दे रहे हैं और हमारी अपनी खुद की अमेरिकन कंपनी अमेजोन अगर ये बताएगी कि नहीं नहीं हमने तो चीजों की कीमतें बहुत इस चीजों की वजह से बढ़ गई हैं, तो उसके ऊपर जरा जो था इनका एतराज आ रहा था। आज एक और भी अच्छी बात हुई है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि जो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अभी साइन कर रहे हैं कि ये जो ऑटो टैरिफ्स लगाए हैं इसको थोड़ा और सॉफ्टन करने की उन्होंने बात की है, और उन्होंने कहा जी कि ये हम लेवीज जो है खत्म करेंगे उन फॉरेन पार्ट्स की गाड़ियों में के लिए जो कि मैन्युफैक्चर होंगी यूएस से, यानी कि अगर पार्ट्स बाहर से भी आए हैं लेकिन उनका मैन्युफैक्चर यूएस के अंदर हो रहा है तो उन कंपनीज को हम दे सकते हैं थोड़ा और यानी कि ऑफ दे सकते हैं, तो उसमें उनको छूट मिल सकती है। यूके की जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है वो कह रही है जी कि अब हमने एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई है, ये जो इंडियन नेशनल जिसने के बहुत सारे थ्रेट्स दिए थे पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर लंदन में और पुलिस के ऊपर भी बहुत सारे स्लर्स जो थे वो डाले थे, तो उसके लिए वो कह रहे हैं जी हम एक इन्वेस्टिगेशन अब बिठाएंगे। दो इंडियन जो थे उनको तो अरेस्ट किया था क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली पुलिस को भी थ्रेटन कर रहे थे, एक को तो जो है विदाउट कोई एक्शन लिए छोड़ दिया था, वो 26 ईयर्स का था, एक जो 33 ईयर का आदमी था उसको बेल पे तो छोड़ा है अभी जून तक, लेकिन वो कहते हैं जी इन्वेस्टिगेशन अंडरवे रहेगी। नेट पुलिस स्पोक्स पर्सन ने कहा कि ये दोनों जो हैं मुस्लिम पुलिस ऑफिसर जो इनके पास खड़ा था उसको अब्यूज कर रहे थे और पुलिस ने जब इसको पकड़ने की खासतौर पे कोशिश की जो 33 ईयर ओल्ड था तो इसने भागना शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि इसको हमने जो है पकड़ा है रेशली एग्रेवेटेड पब्लिक ऑर्डर ऑफेंस के अंडर। एक और इंडियन ऑरिजन का ब्रिटिश कश्मीरी जो है अंकित लव 41 ईयर्स उसकी एज है, उसने तो जी बहुत ज्यादा पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर तोड़फोड़ की, डैमेज किया, वहां पे जो सीसीटीवी लगे हुए थे उन्होंने देखा, ये 300 के करीब इंडियन वहां पे जमा थे जो कि पहलगाम के वाकये के बाद जिसमें झूठ से इंडिया ने पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है, तो ये तो भड़क गए सारे ना, क्योंकि एविडेंस को तो इन्होंने अभी तक प्रेजेंट तो किया नहीं है, बगैर एविडेंस के बस भड़के रहते हैं बस सारा वक्त, तो भड़के हुए ये पहुंच गए पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर। अब ये जो लड़का अंकित है अपने आप को वैसे तो म्यूजिशियन कहता है और उसने अपने एक किया था वन लव पार्टी जो थी वो भी सेटअप की थी, और ये आपको याद होगा कि ये इसने ये रन किया था ये जो थे सादिक खान और फिर उसके बाद जो जमाया के भाई थे जैक गोल्डस्मिथ उनके खिलाफ भी ये लड़े थे, ये लंदन के मेयर बनना चाहते थे मगर ये हारे थे। 2015 में इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया था जी कि मैं जम्मू और कश्मीर की जो इंडियन ऑक्यूपाइड है उसकी जो डोगरा डायनेस्टी है उसका मैं महाराजा हूं क्योंकि मैं भीम सिंह का बेटा हूं, और जो कि आपको पता ही है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जम्मू एंड कश्मीर, प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के, तो उसको तो इनका अगर आप सोशल मीडिया भी देखेंगे तो ये अपने आप को महाराजा लिखते हैं, तो महाराजा साहब ऐसी हरकतें गंदी किस्म की तो ये तो ठीक नहीं है ना। पहले आप देखो तो सही, कोई आपसे बार बार पाकिस्तान कह रहा है कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स बुला लो उनको आप एविडेंस दे दो, पाकिस्तान को तो इंडिया एविडेंस दे ही नहीं रहा है, तो आप वो बुला लो जो है इंडिपेंडेंट जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं उनको बुला लो, उनसे आप करवा लो, उनको बताएं, तो इंडिया तो वो कर नहीं रहा तो इसका क्या मतलब है, पाकिस्तान कह रहा है कि करवाओ तो फिर आप सच्चा कौन है, जिसके पास झूठ है वही उस चीज को छुपाना चाह रहा है ना, तो फिर वो अब आप खुद ही फिर फैसला करें, और ये जो आपके दंगे फसाद हैं फिर ये कितने जस्टिफाइड हैं आप खुद सोचें, और फिर ना सिर्फ आपने ये किया बल्कि हाई कमीशन के दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, खिड़कियां तोड़ी, उनको नुकसान पहुंचाया, तो मतलब हाउ सेंसिबल इज दैट। एनीवेज, हिजबुल्ला के जो लीडर हैं जी नईम कासिम, उन्होंने कहा है कि जो लेबनान की गवर्नमेंट है वो अब कैसे काम कर सकती है इनके साथ, क्योंकि कॉन्स्टेंटली जो इसराइल है वो कंट्री के ऊपर कर रहा है अटैक्स कर रहा है और 3 अटैक्स जो है अभी तक वो कर सका चुका है, तो इसके लिए जो है हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने आज लेबनान की गवर्नमेंट को बोला है कि आपको ये जो आपके कंट्री के ऊपर कॉन्स्टेंटली डेली अटैक्स हो रहे हैं इनको आपको रोकने की जरूरत है। ये जो जो हुआ था ये हिजबुल्ला और इसराइल के बीच में एक सीज फायर डील हुआ था ताकि 14 मंथ वॉर जो है उसको रोका जा सके, लेकिन इसराइल जो है कॉन्स्टेंटली इसको जो है वो एक तो अटैक्स भी कर रहा है और सीज फायर के जितने भी क्लॉजेज हैं उनको भी नहीं मान रहा है। कैसम ने कहा कि ये जो है अभी तक इस महीने में इसराइल 50 के करीब जो स्ट्राइक्स है वो कर चुका है लेबनान पे, तो और कितने स्ट्राइक्स आपको चाहिए है। उन्होंने कहा जी कि ये यूएस ब्रोकर जो सीज फायर था इसको ये लोग खराब कर रहे हैं, और राइट्स ग्रुप्स जो हैं अब तो वो भी बहुत ज्यादा डिनाउंस करने लगे हैं इसराइल के जो अननेसेसरी अटैक्स है लेबनान के अंदर, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल ट्रूस डील जो कराई थी उसको ये वायलेट करते हैं। बहरहाल जी जो इसराइल है वो तो सुनने को तैयार ही नहीं है ना जी किसी की बात, तो भी आप क्या करेंगे। आज ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जॉर्डेनियन अथॉरिटीज जो है उन्होंने फोर्सिबली एविक्ट किया 100 के करीब लोगों को फ्रॉम इनफॉर्मल रिफ्यूजी कैंप जो कि डिस्प्लेस्ड पैलेस्टीनियंस को रखे हुए था। ग्रेटर अमान म्यूनिसपैलिटी जो थी उसने 25 होम्स जिसके अंदर 101 के करीब लोग रह रहे थे, उसमें शॉप्स भी थे, जो इनका कैपिटल है अल महाता उसके कैंप में था, वो उसको डिस्ट्रॉय किया था लास्ट ईयर नवंबर और दिसंबर में। उन्होंने कहा जी कि इन लोगों को गरीबों को एडिक्वेट नोटिस भी नहीं दिया, कॉम्पेंसेशन भी नहीं दिया और रीलोकेशन के लिए कोई असिस्टेंस भी नहीं दी, इनकी जो है लाइवलीहुड जो है डिसरप्ट की, कोई इनको प्रॉपर सेफ गार्ड्स नहीं दिए गए। इन घरों के अंदर जो है बहुत सारे हजारों फैमिलीज रह रहे थे जो कि आए थे यहां पे 1948 का जो नकबा हुआ था उसमें, और फिर ये रेफ्यूजी कैंप जो है जिसको कि जॉर्डेनियन गवर्नमेंट रिकग्नाइज वैसे तो करती है उसमें ये रह रहे थे। अब ग्रेटर अमान म्यूनिसपैलिटी जो है उसका कहना है कि जी हमने एक 4 ईयर स्ट्रेटेजिक प्लान 2026 बनाया है जिसमें कि हम सिटी का ट्रैफिक इंप्रूव करना चाहते हैं, मोर ग्रीन स्पेसेस और पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करना चाहते हैं, उसके लिए हमको एक इनफॉर्मल सेटलमेंट चाहिए है जिसके लिए हमको इनको हटाना ही था, हटाओ लेकिन उनको थोड़ा नोटिस तो दो, फिर उनको बताओ तो सही कि किधर उनको जाना है। तो ये इसके ऊपर आज ह्यूमन राइट्स वॉच ने बहुत ज्यादा एतराज किया है। अथॉरिटीज इन सीरिया जो है वो भी अब जी कह रहे हैं कि हम फुल इन्वेस्टिगेशन बिठाएंगे क्योंकि ये जो क्लैशेस हुए हैं जिसके के अंदर 13 के करीब लोगों के डेथ हो गए हैं नियर इनका जो कैपिटल है डमास्कस उसमें, उसके लिए और जहां पे के ज्यादातर द्रूज कम्युनिटी माइनॉरिटी जो थी वो वहां पे रहती है। इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है उसने कहा जी कि बिल्कुल जो कोई भी सेक्टेरियन वायलेंस के अंदर इन्वॉल्व है उनको हम पकड़ेंगे और सजा देंगे। सीरिया के जो न्यू रूलर्स हैं अभी तक तो वो चीजें ही सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं और वो बार बार कहते हैं कि हमको नेशनल यूनिटी और इंक्लूसिवनेस की जरूरत है, लेकिन ये क्लैशेस जो है फिर भी ये शुरू हुए। ये उस वक्त शुरू हुए जब सोशल मीडिया के ऊपर एक क्लिप आया जिसमें कि इन्होंने दिखाया है कि नाउज बिल्ला किसी ने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के ऊपर कुछ अटैक्स किए हैं और इसको जो है ड्रूज लीडर जो था उसके साथ इन्होंने एट्रीब्यूट किया कि ये बदतमीजी और गुस्ताखी बहुत ज्यादा जो है वो कर रहा है। अटैकर्स जो थे वो मालीहा के एरिया से थे और दूसरे सुन्नी एरियाज के अंदर थे, ये सारे जामा माना के एरिया के अंदर फिर ये जमा हुए और दोनों तरफ से फिर जो है वो गोलियां एक दूसरे के ऊपर चलाई गई जिसके के अंदर 13 लोगों की डेथ्स हुई। अमनेस्टी इंटरनेशनल जो है जी उसने आज से एक बार फिर से कहा है कि इसराइल लाइव स्ट्रीम्ड जेनोसाइड कर रहा है गाजा के अंदर और कॉन्स्टेंटली इलीगल एक्ट्स कर रहा है जिसका के इंटेंशन ये है कि पैलेस्टीनियंस को कंप्लीटली वाइप आउट किया जाए। इसराइली फोर्सेस जो हैं यूनाइटेड नेशंस जेनोसाइड कन्वेंशन जो है उसको वायलेट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा सीरियस बॉडीली और मेंटल हार्म जो है वो सिविलियंस को दे रहे हैं और ये डिलिबरेटली कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इनसे गलती से हो रहा है, डिलिबरेटली ये कर रहे हैं ताकि कंप्लीट फिजिकल डिस्ट्रक्शन जो है इन लोगों की जाए। बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं और ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, कोई भी ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस जो है वो जाने नहीं दे रहे हैं। इन्होंने इन्वेड किया रफा के अंदर जबकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इनको वार्निंग्स दिए थे कि इसके बहुत सारे डेवस्टेटिंग इफेक्ट्स आ सकते हैं सिविलियन पॉपुलेशन पे, फिर भी ये नहीं माने हैं। तो आज उनकी रिपोर्ट आई है, इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने भी अब अपनी सेकेंड डे की हियरिंग्स जो हैं अगेंस्ट इसराइल्स ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशन टू पैलेस्टीनियंस उसके खिलाफ शुरू किए हैं और मोर देन 50 डेज से इसराइल ने टोटल ब्लॉकेट किया हुआ है एड का और एंटर नहीं होने दे रहे हैं गाजा के अंदर। साउथ अफ्रीका जो है इसके ऊपर डटा हुआ है और वो कहता है जी कि मैं बिल्कुल इन सारों को जो है मैं सजा दिलवाऊंगा, जबकि मुसलमान सारे सोए हुए हैं। साउथ अफ्रीका के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ज़ेन डैंगर, वो आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे थे और उन्होंने आज बहुत गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा राइट अंडर द वॉचफुल आईज ऑफ द वर्ल्ड पैलेस्टीनियंस जो है उनको एट्रोसिटीज और जुल्म और क्राइम और प्रोसिक्यूशन और अपार्थाइट और जीनोसाइड जो है गाजा के अंदर फेस करना पड़ रहा है। डेंगर ने कहा कि इसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लेने की जरूरत है। इससे पहले भी आपको पता ही है कि साउथ अफ्रीका के जो लॉयर्स थे वो आईसीजी के जे के अंदर गए थे और उन्होंने कहा था कि ये जो नतन्याहू और उसके जितने भी आसपास के लोग हैं उनके ऊपर एक प्रोब बिठाने की जरूरत है कि इन्होंने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एलिजली किया है कि नहीं किया है, बल्कि उन्होंने तो कहा था किया है। तो ऐसा जो है वो कुछ बंगालीज जो हैं जी अब वो ढाका के अंदर कुछ फ्लैग्स लेके फिर रहे हैं जिनके के ऊपर बहुत ज्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी खास तौर पे इंडिया का एतराज आ गया है, क्योंकि वो जो इन्होंने बांग्ला लैंग्वेज में लिखा है उसमें अलकायदा और आइसिस से ये जो हैं वो लगते हैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड। इसके अलावा वहां पे पिक्चर्स जो है अब उसामा बिन लादन की भी नजर आने लगी हैं जिनको कि ये लेक के आप प्रोसेशंस निकाल रहे हैं और उसको अपना हीरो बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं जी कि ये एक बैंड आउटफिट है हज़्ब तहरीर जो कि ये पूरा एजुटेशन का प्रोग्राम चलाए हुए है एंड इन ब्रॉड डे लाइट, कुछ इनको शर्म वरम भी नहीं आता है, ये दिन के वक्त जो है ये ले लेके इसको फिर रहे हैं और ओपनली अब बांग्लादेश के मिलिट्री को बोल रहे हैं कि आप टेक ओवर कर लो क्योंकि ये मुल्क जो है नहीं चल रहा है। ये इन्होंने बड़े बड़े जो अपने पोस्टर्स है ये ढाका की दीवारों पर लगाए हैं, कभी तो कुछ नजर आते थे शेख हसीना के जमाने में भी, हालांकि वॉर ऑन टेरर बड़े जोरों से चलता था उनके जमाने में, लेकिन जब से वो गई है तो वो अब कॉन्स्टेंटली बांग्लादेश मिलिट्री को बोल रहे हैं कि आप कू करें और आप पूरे तरीके से और हम आपके साथ हैं और ये खत्म करो ये इंटरिम गवर्नमेंट और इसको यहां पे लेकर आओ मिलिट्री को। ठीक है जी,
यहां पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारा नंबर 4166201778 और खबरें सुनने के लिए अगर आपको सही सुनाई नहीं दे रही यानी रेडियो की आवाज में सारे वेदर की प्रॉब्लम की वजह से भी समटाइम आपको स्टैटिक फील होता है रेडियो पर, तो 6478724900 डायल करके आप हमारी खबरें जो हैं वो सुन सकते हैं। वैसे भी आप 24/7 हमारा रेडियो सुनना चाहें तो 6478724900। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर खबरों का पार्ट टू लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो। अकाल ट्रक एंड लूम
ताड़े ट्रक बादशाह दी क्वालिटी सर्विस रिपेयर ऑयल चेंज वॉश ते मेंटेनेंस। एक और खुशखबरी नॉर्थ अमेरिकन चाइनीज ते कोरियन नवे ते इस्तेमाल शुदा टायर विद फुल वारंटी।
अकाल ट्रक एंड लूम 1776 मेयरसाइड ड्राइव 905-565-1100
Spear and McKay Menswear, fully vertical operation, direct from factory to customer. Quality compare कर सकते हैं आप Harry Rosen, Burberry और Hugo Boss से 100% Italian wool suits from $249.99, 100% Egyptian cotton shirts from $29.99, 100% Italian wool trousers from $49.99. We have moved to a new location in Heartland Town Center, 775 Britannia Road West, Unit 7B, Mississauga पे हम Sundays को भी open हैं। ज्यादा information के लिए call कीजिए at 905-670-3388 या visit कीजिए हमारी website spearandmckay.com।
बटाला सुपर मार्केट, बटाला सुपर मार्केट, हलाल मीट ते सब्जियां नाले फल भी ताजा मिलते, इत्थे मछली अंडे दूध दही ते सस्ते चावल मिलते, मल्ले पकौड़िया ताजा मिठाइया गर्म समोसे मिलते, बटाला सुपर मार्केट।
स्कारपोरो दी वाहिद ते मिसाली सुपर मार्केट बटाला सुपर मार्केट 200 मार्कम रोड स्कारपोरो, मार्कम रोड से इंग्लैंडन दा संगम, फोन 416-264-3111।
डेंटिस्ट्री ऑन रिजवे बाय डॉक्टर नाजिया रहमान, अब मिसिसागा में दूसरी लोकेशन के साथ, रूट केनाल, व्हाइट टीथनिंग, इम्प्लांट डेंटिस्ट्री, डेंटल क्राउन्स, विजडम टूथ रिमूवल, क्वालिटी डेंटल केयर पूरी फैमिली के लिए, एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स, वॉक इन एंड इमरजेंसी, एक्सेप्टिंग कैनेडा डेंटल केयर प्लान। डेंटिस्ट्री ऑन रिजवे बाय डॉक्टर नाजिया रहमान, 3465 प्लेटेनियम ड्राइव, यूनिट 76, मिसिसागा, फोन 905-820-0900, 905-820-0900।
हाँ जी, वेलकम बैक। तो पाकिस्तान के अंदर आज DGISPR जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने आज जनाब काफी कच्चा चिट्ठा जो है इंडिया का खोला है। ये इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है उसकी वो इररिफ्यूटेबल एविडेंस है पाकिस्तान के बाद, ये बात उन्होंने की। उन्होंने कहा जी कि 7 दिन हो गए हैं पहलगाम के अटैक को और एक भी पीस ऑफ एविडेंस जो है वो हमको नहीं दिया है। हम बार बार बोल रहे हैं कि हमको बताएं टू सब्सटेंशिएट दिस बेसलेस एलिगेशन अगेंस्ट पाकिस्तान, लेकिन कोई एलिगेशन हमको नहीं दिया गया है। क्योंकि आज ये भी हुआ है कि जी इंडिया के अंदर भी मोदी जी ने आज जो मीटिंग किया है उसके अंदर उन्होंने कहा है अपने मिलिटरी को कि जो भी आपसे होगा आप कर सकते हैं। अब जो भी होगा का क्या मतलब है वो मालूम नहीं है। बहरहाल जी, आज इन्होंने एविडेंस जो है वो रखी है, बहुत सारा, सिर्फ लोकल नहीं, फॉरेन मीडिया भी जो था वो यहां पे आया हुआ था और उनके सामने उन्होंने कहा जी कि इंडिया कॉन्स्टेंटली ऑपरेट कर रहा है टेरर नेटवर्क्स इनसाइड पाकिस्तान। बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स, IEDs और लीथर मटीरियल्स जो हैं वो टेररिस्टों के पास से हमको मिले हैं, जो कि वो यूज कर रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेज और इनोसेंट सिविलियंस के अगेंस्ट। और उन्होंने कहा जी कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है इसको ऑर्केस्ट्रेट इंडियन स्टेट कर रही है। उन्होंने कहा जी ये बहुत सारे उन्होंने फिर वाक्य बताए। उन्होंने कहा जी April 25th को एक टेरर सस्पेक्ट जो है जिसको कि ट्रेन किया गया था इंडिया में, उसको हमने पकड़ा था झेलम बस टर्मिनल के पास, उसके पास से 2.5 kg एक्सप्लोसिव मटीरियल भी हमने ऑपरेशन में लिया था और उसके घर पे जब छापा मारा तो वहां पे हमको एक ड्रोन मिला था इंडियन साख का और 1 million कैश जो था वो भी हमको मिला। फोरेंसिक एनालिसिस जो उसका फोन का हमने मोबाइल फोन का किया, उसमें कॉन्वर्सेशन जो थे उसके जो कॉन्टेक्ट है इंडिया में उसके साथ थे। इसके अलावा फिर उसी के बेस पे हमने जब कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट करनी शुरू की तो पता चला कि 4 इंडियन मिलिट्री के ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है, लेकिन ये आज DGISPR ने लगाया। उन्होंने कहा जी कि इसके अंदर 4 इंडियन मिलिट्री के ऑफिशियल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और उनके नाम भी उन्होंने दिए हैं। उन्होंने कहा जी उनके नाम है मेजर संदीप वर्मा, सूबेदार सुखविंदर, हवालदार अमित और एक सिपाही जो है वो इसके अंदर है और ये सारे लोग जो हैं अपने हैंडलर्स इंडिया में जो बैठे हुए हैं उनसे इंस्ट्रक्शंस लेके पाकिस्तान के अंदर सिविलियन कैजुअल्टीज करते हैं और ये झूठ बोलते हैं कि पाकिस्तान जो है हब ऑफ टेररिज्म है, हालांकि सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो इनको दे रहे हैं। वो कहते हैं जी यहां तक कि वीडियोस तक उन्होंने इनको भेजी हुई थी कि कैसे तुमको बॉम्ब बनाना है। मेजर संदीप के बारे में उन्होंने कहा जी कि वो ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है ये सारा टेररिज्म इन बलूचिस्तान और टू लाहौर, सारी जगहों के ऊपर। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी November 22nd को सूबेदार सुखविंदर जो है उसने एक जो हमारा पाकिस्तानी अब्दुल मजीद उसको कहा कि तुम एक हेडमरला के एरिया में जाओ और वहां से IED जो है वो उठाओ और एक डैमेज ड्रोन है उसको भी उठाओ। और November 30th फिर मजीद जो है उसको कहा कि तुम एक प्लांट करो IED जो है वो एक मिलिट्री व्हीकल के ऊपर जलालपुर जट्टा के अंदर, जिसमें कि जाहिर है जब फटा था तो उसके अंदर 4 लोगों के डेथ हुए थे। वो कहते हैं जी जब इसने ये सारी कार्रवाइयां की तो इसके अकाउंट में 6,56,000 रुपीज जो है वो ट्रांसफर किए गए। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि March 18th को मेजर सुखविंदर ने एक लोकल इलाके की जो है निशानदेही देते हुए उसको IED लगाने के लिए बोला कोटली के एरिया के अंदर। वहां पे पास ही में एक कुछ स्कूल के बच्चे जो थे वो थे, उन्होंने एक सस्पिशियस बैग देखा, उन्होंने फिर अपने स्कूल को बताया, स्कूल ने मिलिट्री यूनिट को बुलाया, जब उन्होंने देखा तो उसके अंदर बॉम्ब था जो कि साइड से फिर उठाया गया, वरना वो फटता तो बच्चे जाहिर है फिर बच्चों की बहुत सारों की डेथ्स होती। वो कहते हैं जी इंडियन मीडिया जो है फॉल्सली क्लेम कर रहा है और वो कहकर हमने किया है, क्योंकि जैसे ही ये जलालपुर जट्टा का हमने पकड़ा तो एकदम इंडियन मीडिया पे चीजें आनी शुरू हो गई कि पाकिस्तान के भेजे हुए जो है 5 बॉम्ब 5 डिफरेंट जगहों से जो है वो इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आए हैं। फिर वो कहते हैं जी अभी रिसेंटली April 26th को सुखविंदर जो है उसने एक और IED लगाने के लिए बोला नडाला के एरिया के अंदर और उसने मजीद को बताया कि तुम ये अटैक जो है लोकल बस स्टैंड पे करो। तो वो कहते हैं जी इस तरह के बेशुमार हमने जो ये जो कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट किया उसके अंदर इनके मिलिट्री के अफसर जो इन्वॉल्व है वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं पाकिस्तान में इन लोगों को और ये अपने हैंडलर से ले लेके अपने ही लोगों को मारने के ऊपर जो है वो पैसे के चक्कर में वो काम कर रहे हैं। आज भी जो है इसके अलावा पाकिस्तान मिलिट्री ने शूट डाउन किए हैं 2 इंडियन सर्वेलेंस क्वाड कॉप्टर्स जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो थे कॉन्स्टेंटली फिर रहे थे और इंडिया की तरफ से कॉन्स्टेंटली वायलेशन हो रही थी, जो ये जो दोनों के बीच में सीज फायर है और जो ये प्रोवोकेटिव एक्शंस हैं उनको जब ये मॉनिटर इन्होंने किया तो इनको पता चला जी कि ये हो रहा है। एक जो पहला था वो तो मनवर सेक्टर के अंदर था, भीमर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ये ड्रोन जो था ऑपरेट किया जा रहा था बाय इंडियाज फिफ्थ असम रेजिमेंट की तरफ से, इसको मार के गिराया पाकिस्तान मिलिट्री ने। उसके थोड़े ही देर के बाद सेकेंड इंडियन क्वाड कॉप्टर जो था उसको भी इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय किया, दिस टाइम एट सतवाल सेक्टर, और ये एंटर हो रहा था, ये काफी हाई एंड था, इसके अंदर जो थी चीजें लगी हुई थी पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर स्पाइंग करने के लिए, तो इसको भी मार के गिराया। सिक्योरिटी और डिफेंस एक्सपर्ट्स ने आज कहा कि इंडिया जो है इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल मिलिट्री एक्शंस कर रहा है, कॉन्स्टेंटली रीजन का पीस जो है खराब करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ आज तीन टेररिस्टों को भी मार गिराया गया इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में, तुर्बत के एरिया में नियर बलूचिस्तान कच्च डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे, और जो टेररिस्ट थे उनसे फिर आर्म्स और एम्यूनिशन और एक्सप्लोसिव जो थे वो भी लिए, और पता चला कि ये तीन टेररिस्ट जो हैं बहुत सारे दूसरे एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व थे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए। तो पाकिस्तान तो कब से बेचारा रो रहा है, पाकिस्तान की तो बात कोई सुनते ही नहीं है। पाकिस्तानी मिशन टू यूनाइटेड नेशंस जो है उन्होंने आज कहा है कि उनके पास क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है ये बताने के लिए कि जाफर एक्सप्रेस का जो अटैक था उसको रीजनल एडवर्सरीज ने सारा ऑर्गेनाइज किया था, उस ट्रेन को फिर हाईजैक किया था ऑन मार्च 11, और ये किया था बीएलए के टेररिस्टों ने जिन्होंने कि एम्बुश किया था पिशावर बाउंड ट्रेन को जो कि 440 पैसेंजर्स लेके जा रही थी, और फिर लोगों के ऊपर फायर ओपन किया जिसमें बहुत सारे लोगों के डेथ्स हुए और फिर हॉस्टेजेस इनको लिया था। ये जो आज यूनाइटेड नेशंस में विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एसोसिएशन नेटवर्क बाय यूएन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म एट यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क में ये जो लॉन्च की थी इन्होंने ये आज सेमिनार, उसमें जवाद अजमल काउंसलर एट पाकिस्तान मिशन जो है उन्होंने एक तो पहलगाम के अटैक में जो लोगों ने अपनी जान गंवाई उसका बहुत अफसोस किया, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस है कि जाफर एक्सप्रेस के अंदर जो 30 इनोसेंट पाकिस्तानीज मरे थे उसके अंदर कौन इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के दूसरे मेंबर्स को टू कंडेम दीज अटैक्स, और जो इनका रूट कॉज है टेररिज्म का और वो लोग जो कि इसको फैला रहे हैं उसको खत्म करने की जरूरत है, लेकिन उन्होंने कहा जी कि टेररिज्म और स्ट्रगल फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है उसके बीच में आपको डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा, और इसीलिए इन दोनों चीजों के लफ्जों के एक टेररिज्म और एक सेल्फ डिटर्मिनेशन की स्ट्रगल के लिए आपको प्रॉपर जो है वर्ड्स लाने पड़ेंगे यूनाइटेड नेशंस के अंदर। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि पाकिस्तान बिल्कुल कमिटेड है कि जो नेक्स्ट मेजर टेक्निकल डेस्टिनेशन होएगा वो पाकिस्तान रहेगा, और उन्होंने कहा जी कि 700 मिलियन यूएस डॉलर्स के फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आईटी सेक्टर में ला रहे हैं एट डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस जो इस्लामाबाद में हुई थी उसके अंडर। ये जो डेलीगेट्स थे 45 कंट्रीज से थे, और पाकिस्तान का फर्स्ट एवर डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट DFDI में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है अब सिर्फ बैठा हुआ इंतजार नहीं कर रहा है बल्कि फ्यूचर जो है उसको शेप कर रहा है, इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स जो हैं पाकिस्तान के आईटी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उन्होंने कहा जी कि हमने भी फेडरल लेवल के गवर्नमेंट के लेवल पे भी बहुत सारे इंसेंटिव्स देने को हम तैयार हैं और दिए भी है हमने, हम एक लॉन्च कर रहे हैं फेडरल एंड प्रोविंशियल आईटी पार्क्स, इंक्यूबेशन सेंटर्स, लार्ज स्केल R&D इकोसिस्टम्स, और जितने भी बच्चे 15 टू 30 ईयर्स की एज में हैं जो कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन बनाते हैं उनके लिए अच्छी खबर यह भी है कि हवावी जो है वो ट्रेन करेगा 200,000 इन बच्चों को और उनको ज्वाइंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर आईटी की तालीम देगा। मार्च में पाकिस्तान जो है उसने रिकॉर्ड 4.1 बिलियन डॉलर का फॉरेन रेमिटेंसेस भेजा था, जिसमें कि शो किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो डिजिटल पोटेंशियल है उसके अंदर बहुत ज्यादा लोगों का ट्रस्ट है और वो समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के डिजिटल जो पाकिस्तान है उसके अंडर एग्रीकल्चर जो है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा और हम इसके लिए यूज करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अलावा हम एक्सपैंड करेंगे एक्सपोर्ट्स को यूजिंग स्मार्ट टेक्नोलॉजी। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ऑलरेडी एंटर हो गया है डिजिटल ईरा में, आईटी एंड टेलीकॉम की जो शजा फातिमा थी मिनिस्टर उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर ओवर 100 मिलियन यूथ का जो यूथ है उसके लिए वो हमारे पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट डिजिटल एसेट है। इसके अलावा सीईओ ऑफ पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड अबू बकर जो है उन्होंने भी बोला कि आईटी एक्सपोर्ट्स जो है वो एक्सीड कर सकता है $4 बिलियन के में इसे इन 2020 यानी कि इसी साल में। हिंदुस्तान की जो आरएसएस है जी वो तो अब पहलगाम टेरर अटैक के ऊपर काफी बिफरी हुई है। हालांकि वो डायरेक्टली रेफर तो नहीं कर रही है मुसलमानों को लेकिन फिर भी उसके ऊपर बात जरूर कर रही है। इसका जो एक न्यूज़पेपर है ऑर्गेनाइजर इसके अंदर एक एडिटोरियल आया है जिसमें कि उन्होंने बहुत ज्यादा कंडेम किया है कि ये जो इनह्यूमन अटैक हुआ है जिसमें इनोसेंट हिंदुओं को मारा गया है ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर ग्रुप है। हालांकि इस ग्रुप का ना किसी को पता है ना उसका नाम सुना है। बहरहाल वो कहते हैं जी इन्होंने हिंदुओं को मारा है। कल हमने आपको पूरी लिस्ट दिखाई थी उसके अंदर जो है कितने सारे मुसलमान भी थे। तो बहरहाल वो कहते हैं जी कि ये जो है ये मुसलमान जो है ये तो कोलैटरल डैमेज था। ये तो वैसे ही जब उन्होंने भाईजान कोई एक बात करे ना एक तरफ आप कह रहे हैं इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की। अगर इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की चलो उसमें ठीक है बिल्कुल आपकी बात कि हिंदू मुसलमान सब मारेंगे लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि जी पूछ पूछ के वो हिंदू जिनका नाम था उनको मार रहे थे वो तो फिर ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आप कर रहे हैं ना। तो आज एक तरफ आप वो कर रहे हैं एक तरफ वो भी कह रहे हैं। फिर इन्होंने एक जी अंबेडकर साहब का आर्टिकल जो है वो कोट किया और उन्होंने कहा जी कि जो हिंदुओं के खिलाफ जो हेट्रेड है इट इज रूटेड बिहाइंड द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। पता नहीं आप अंबेडकर साहब ने इस तरह की बात की भी है कि नहीं बहुत बड़े इनके लीडर थे। तो उन्होंने कहा जी कि हिंदुस्तान में जो पहला इन्वेडर मोहम्मद बिन कासिम आया था उससे लेके अभी तक आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान आसिम मुनीर साहब जो है वो सेम आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजर का आर्टिकल है जो मैं आपको सुना रही हूं उसके अंदर क्या लिखा है। वो कहते हैं जी ये जो आइडियोलॉजी ऑफ काफरोफोबिया है इसका रूट कॉज वही टेररिज्म और इस्लामिक टेररिज्म है और ये बहुत ही ब्रूटल ऑनस्लॉट जो है हिंदुओं के खिलाफ इन्होंने किया हुआ है और हमने देखा ये कि कैसे हिंदुओं को कन्वर्ट किया और फिर उन्होंने पार्टीशन किया। तो ये जो आइडियोलॉजी है बड़ी थ्रेटनिंग है और जो है इसको खत्म करने की जरूरत है क्योंकि ये एंटी ह्यूमन डॉगमा है इनका। आरएसएस के चीफ जो है मोहन भगवत उन्होंने कहा जी कि ये जो फनेटिक्स है इन्होंने लोगों को मारा और ये इनके रिलीजन पूछ रहे थे क्योंकि हिंदू तो ऐसा कभी भी नहीं काम कर सकता है। वाह जी वाह क्या बात है। तो ये जो आपके जो मेजर हैं चार मिलिट्री के ये कौन है ये फरिश्ते हैं जो कि पाकिस्तान में टेरर फैला रहे हैं जी हिंदू ही है ना वो। तो बहरहाल जी तो जिसका जिक्र आज आईएसपीआर के डीजी ने किया है यानी मैं उस तरफ इशारा कर रही हूं। तो उन्होंने कहा जी कि ये फनेटिक्स होते हैं ये सारे और ये इसलिए हिंदुओं को मार रहे हैं। हमारा जो रिलीजन है हिंदुइज्म उसमें कोई भी ऐसा नहीं करता है वो किसी को हार्म नहीं करता इसीलिए हम ना तो हार्म करते हैं ना डिसरिस्पेक्ट करते हैं अपने नेबर को। भाई जनाब की तबीयत ठीक है आपके तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज बोल दिया है कि मैं बिल्कुल खुली छुट्टी दे रहा हूं जो आप करना चाहते हैं आप करें पहलगाम के सिलसिले में। तो अभी मतलब क्या हो रहा है। अच्छा खैर जी कांग्रेस जो है जनाब उसके ऊपर काफी बेचारे पे बदबख्ती आ गई है क्योंकि उन्होंने एक पोस्टर जो है वो निकाला है और उसके ऊपर लिखा हुआ है गायब ना सोशल मीडिया पे। फिर उन्होंने उसको सोशल मीडिया से हटाया क्योंकि आपको पता ही हमने आपको कल ही ये खबर सुनाई थी कि कांग्रेस काफी भड़की हुई थी कि पहलगाम अटैक के ऊपर एक मीटिंग बुलाई गई थी और मोदी जी जो थे वो बिहार के अंदर रैली कर रहे थे तो वो उसके अंदर नहीं थे तो इसीलिए उन्होंने एक पोस्टर बनाया उसके अंदर कोई भी वो कपड़ों के अंदर खड़ा हुआ नहीं था और उसके ऊपर लिखा था गायब और पीएम का नाम तो उसमें मेंशन नहीं था लेकिन जाहिर है कि लोग जो है वो बड़े उसको गुस्से में हुए। अच्छा अब ये जो पोस्टर है ना जी ये हमारे जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने अब जो है इसको शेयर कर लिया है। अब जब उन्होंने शेयर किया तो उसके नीचे उन्होंने लिखा कि हमने ये तो सुना था कि गधे के सिर से जो सींग है वो गायब हो जाते हैं लेकिन यहां पे तो मोदी जी मिसिंग है। अब बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है गौरव भाटिया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ट्वीट दिखाया जो फवाद चौधरी साहब का और उन्होंने कहा जी कि ये जो एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हमारे बीच में है ये लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस है। उसके कांग्रेस को ये खिताब उन्होंने दिया और उन्होंने कहा जी कि ये जो है बड़ा स्ट्रांग मैसेज है क्योंकि फवाद चौधरी फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हुए पाकिस्तान में तो उन्होंने कहा जी कि उसकी तरफ से ये ऐसे आना ये शो कर रहा है कि हमारे बीच में भी मीर जाफर और मीर सादक जो है वो मौजूद है और ये जो इन चीजों की इंस्ट्रक्शन जो है ये डायरेक्टली राहुल गांधी जी देते हैं जो कि इंडिया के लिए बहुत ही शर्म का बायस है क्योंकि ये इंडिया को वीक करना चाहते हैं। ते भाईजान चीजें बड़ी पैड़की हुई हैं दोनों तरफ। अच्छा जनाब परवीन बॉबी साहिबा, आपको मालूम ही है 70s और 80s की हसीन तरीन और स्टाइलिश हिंदी फिल्मों की जो एक्ट्रेस थी, अपनी उसकी लाइफ बेचारी की काफी मैसी थी और हमेशा मेंटल इलनेस उसको रहता था। तो आज महेश भट्ट साहब का एक इंटरव्यू आया है जो कि उन्होंने दिया, और उन्होंने कहा जी इंटरव्यू में कि जिस वक्त मैं इसके साथ रिलेशनशिप में एंटर हुआ उस वक्त मैं मैरिड था किरण भट्ट से, और जिस वक्त मेरी शादी मैं रिलेशनशिप में इसके साथ गया तभी मुझे पता चला कि इसकी तो ऑलरेडी शादी हुई थी, क्योंकि इसकी मां जो थी वो जूनागढ़ से जो है वो विजिट करती थी और डिस्कस करती थी इसकी मैरिज के लिए। वो आदमी इसको छोड़ छाड़ के पाकिस्तान भाग गया था। उसके बाद जब मैंने पाकिस्तान को विजिट किया कारा फिल्म फेस्टिवल के बीच, तो मुझे किसी ने बताया एक आदमी है जो कि परवीन बॉबी का शायद हस्बैंड है, वो आपसे मिलना चाहता है। मैंने सोचा पता नहीं वो क्यों मिलना चाहता है, हालांकि ऐसा नहीं था कि मैं उससे नहीं मिलना चाहता था, मैं मिलना चाहता था लेकिन सर्कमस्टेंसेज कुछ ऐसे हो गए कि मैं नहीं मिल सका, क्योंकि मैं तो ऐसा आदमी नहीं हूं कि किसी के ऊपर भी मैं दरवाजे बंद करता हूं। जो परवीन बॉबी थी वो अपने पीक ऑफ द करियर में थी 1977 में, जब उसका ताल्लुक महेश भट्ट के साथ होया और 3 साल ये रिलेशनशिप रहा, क्योंकि उसकी उसी वक्त जो है वो रिलेशनशिप टूटी थी कबीर बैदी के साथ, वो काफी डाउन फील कर रही थी और फिर जो है वो उन्होंने इनका कंधा ढूंढा। परवीन बॉबी जो है जस्ट एट द एज ऑफ 55 इन 2005 उनका जो मुंबई का अपार्टमेंट था उसके अंदर शी वॉज फाउंड डेड, तो काफी हार्ट ब्रोकन थी। और जनाब ये जो एक्शन पैक थ्रिलर किंग आ रहा है मूवी जिसको के बना रहे हैं सिद्धार्थ आनंद, बिल्कुल उसकी तैयारियां जोरों शोर से चल रही है, और अभी खबर आई है कि उसके अंदर अभिषेक बच्चन और सुहाना खान और अभय वर्मा और अरशद वारसी और जयदीप अलावत भी होंगे, लेकिन सोर्सेज के मुताबिक शाहरुख खान ने कहा है कि मेरी हीरोइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ दीपिका पाडुकोन होगी। लेकिन दीपिका जो थी उसने अभी रिसेंटली एक बच्चे को जन्म दिया था और फिर वो शेप में नहीं थी, तो वो कह रही थी कि मुझे जिम में जाना है और शेप में आना है, फिर किंग के भी जो स्केड्यूल्स थे उसमें बहुत सारा डिले आया और अब उसको पता चला है शाहरुख को कि दीपिका वापस आ सकती है, तो शी इज गोइंग टू बी इन किंग। वैसे हमने आपको पहले भी एक दफा बताया था कि शायद वो नजर आ सकती है, पहले भी ये र्यूमर था। इसके साथ साथ शाहरुख खान के बारे में आपको पता ही, अक्सर उनसे पूछा जाता है तुम हॉलीवुड में क्यों नहीं जा रहे हो, तो वो कहता है नहीं मैं इधर बिल्कुल ठीक हूं। अब पता चल रहा है कि शायद वो हॉलीवुड के अंदर डेब्यू कर सकते हैं एंड दैट ऑल्सो इन मार्वल यूनिवर्स। तो प्रिलिमिनरी स्टेज के कॉन्वर्सेशन जो है वो हो गए हैं, कुछ स्पेसिफिक्स तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये कहना कि एवेंजर्स डूम्स डे में ये हो सकते हैं इसके ऊपर काफी स्पेक्यूलेशन चल रहा है, हो सकता है इसमें हो सकता है ना हो, तो अभी लोगों को जरा थोड़ा सा उसमें रखा गया है। मेकर्स जो है उन्होंने रिलीज किया है आज आमिर खान का सितारे जमीन पर का ट्रेलर, और उसके अंदर बहुत ही जबरदस्त रिव्यूज आ रहे हैं। जिसने ये ट्रेलर देखा है वो कहते हैं वॉच CBFC #, तारे जमीन पर ट्रेलर, इट्स अमेजिंग। आमिर खान्स कैरेक्टर गुलशन इज अ स्टार्क कंट्रास्ट ऑफ निखुम, इट्स अ 3-minute 29-second ट्रेलर, इट्स ग्रेट। और वो कहते हैं जी कि इसके अंदर आपको कॉमेडी और इमोशंस नजर आएंगे और आमिर ने फैबुलस जॉब इसके अंदर किया है, इसमें नजर आएंगी जेनेलिया देशमुख भी आपको, उसने भी वो कहते हैं जी बहुत ही अच्छा काम किया है। इसके अलावा दर्शील सफारी भी आपको नजर आएगा, जो छोटा सा बच्चा था जो आया था तारे जमीन पे अगर आपको याद हो, और ब्रिजेंद्रा काला, राहुल कोहली, करीम हाजी, सुनैली कुलकर्णी, अमित वर्मा, अनूप कुमार मिश्रा और सुरेश मेमन भी इस मूवी में आपको नजर आ सकते हैं। और जनाब खेलों की खबरों में क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने आज अपना चौथा BPSL 10 मैच जीता, लेकिन आज 10 विकेट से जीता अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान्स इन द 18th मैच ऑफ PSL एट लाहौर कदाफी स्टेडियम। ओपनर फिन एलन और स्किपर साउथ शकील जो हैं उन्होंने ही 90 रन बना लिए 0 के ऊपर इन 6.5 ओवर्स, 79 डिलीवरीज टू स्पेयर, एंड दिस मार्क्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन PSL का हिस्ट्री के जिसके अंदर 10 विकेट से ये लोग जीते हैं। इन्होंने टॉस जीता था और बोलिंग करने का पहले जो था वो सोचा था, इन्होंने डिसमेंटल किया सुल्तान्स को फॉर 89 ऑल आउट इन 17 ओवर्स में। खुरम शहजाद जो थे उन्होंने सबसे पहले आउट किया यासिर खान को 5 पे इन 1.1 ओवर्स, उस्मान खान को सेकंड जो है बॉल डक इसने किया, 2 मोर फिर इसने विकेट्स लिए। नेक्स्ट ओवर के अंदर कामरान गुलाम को जिसको आउट किया 3 पे, कर्टिस कैम्बर को 4 पे, और रिड्यूस किया मुल्तान सुल्तान्स को 20 for 4 इन जस्ट अबाउट 3.4 3.4 5 ओवर्स में। कैप्टन मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद ने कुछ स्टेबलाइज करने का कोशिश किया, लेकिन फहीन अशरफ ने इफ्तिखार को 6 के ऊपर आउट किया। माइकल ब्रेसवेल जो है उसको डक पे, डेविड विलरी जो है उसने फिर रिमूव किया मोहम्मद वसीम जूनियर को, राइली रोसू जो है उसको रन आउट किया उसामा मीर ने फॉर 11, विकेट कीपर रूसल मेंडिस ने फिर रन आउट किया मोहम्मद हसनैन को फॉर 2 ऑन अ ब्रिलियंट थ्रो ऑफ हसन नवाज। स्किपर मोहम्मद रिजवान जो है उसने बड़ा खेलने की कोशिश की, 44 रन्स बनाए लेकिन कुछ भी ना हो सका, और वो बनाना तो चाहता था 50, लेकिन दूसरे एंड पे जो उबैद शाह था उसको फिर वसीम जूनियर ने आउट कर दिया था, तो बेचारा अपने 50 नहीं बना सका। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज, टेंटेटिव स्केड्यूल ऑफ 5 मैच T20 सीरीज जो कि होने वाला है पाकिस्तान और बांग्लादेश में, उसका स्केड्यूल आज रिवील किया गया है। सीरीज जो है होगी फैसलाबाद में, जहां पे के 2 मैचेस खेले जाएंगे, फिर 3 जो है लाहौर में आएंगे। बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान May 21st को पहुंचेगी। फर्स्ट T20 जो है वो May 25th को इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में होगा, सेकंड भी उसी वेन्यू पे होगा ऑन May 27th। उसके बाद टीम जो है लाहौर जाएगी, वहां पे मैचेस 3 जो है वो May 30th, June 1 और June 3rd को होएगा।
और जनाब जैसे कि PSL की बात बताई इन्होंने, कल मैच खेला जाएगा लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, और ये टोरंटो टाइम सुबह तकरीबन 11 बजे शुरू हो जाएगा लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो स्टिल इस्लामाबाद जो है वो लीड कर रहे हैं, 5 मैचेस खेले हैं और 5 मैचेस ही इन्होंने जीते हैं, नंबर 1 पर है। आज क्वेटा जो है वो नंबर 2 पर आ गया, इन्होंने 6 मैचेस खेले हैं, 4 मैच विन किए हैं क्वेटा ने और 2 मैच इन्होंने लॉस किए हैं। उसके बाद नंबर 3 पे लाहौर कलंदर है, 3 मैचेस इन्होंने जीते हैं और 3 मैचेस इन्होंने हारे हैं। चौथे नंबर पर पहुंच गया है कराची किंग, 6 मैचेस खेले हैं, 3 मैचेस जीते हैं और 3 मैचेस इन्होंने हारे हैं। पांचवें नंबर पर आ गया है सबकी जान पेशावर जलमी, तो जलमी साहब आपको कुछ करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं बहुत सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग अगर है तो वो जलमी की है, तो 6 मैचेस खेलकर
जुल्म किया अपने फैंस पे,
बिल्कुल 2 मैचेस जीते हैं और 4 मैचेस हार कर 5वें नंबर पर हैं। और सबसे आखिर में कौन है,
सुल्तान ये
मुल्तान सुल्तान, और 7 मैचेस खेले हैं, 1 मैच ही जीता है और 6 मैचेस उन्होंने
सुल्तान जो है
लूज कर दिए हैं, और वो अभी तक सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं,
यहाँ के हम सिकंदर हैं,
तो देखते हैं आने वाले सेकंड राउंड में चीजें जो हैं वो कैसे आगे बढ़ती हैं। कल मैच लाहौर कलंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड में होगा, तो ये टोरंटो टाइम तकरीबन सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगा। खबरें आपने समाज फरमा ली जनाब, तो आई होप कि आप लोग अब अपना टेम्परेचर नॉर्मल हो गया होगा। अगर आप कहीं ऐसी जगह गुजर रहे हैं और वेदर की वजह से भी आपको फोन रेडियो जो है वो स्टैटिक सुनाई दे रहा है, तो एक नंबर डायल कीजिए 6478724900 डायल करके आप क्रिस्टल क्लियर आवाज हमारी सुन सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट eawaz.com, यहां भी आप रेडियो सुन सकते हैं और टेलीविजन देख सकते हैं। चलिए जनाब टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक लेते हैं, फिर प्रोग्राम में वापस आते हैं। 4166201778 हमारा नंबर है, कॉल कीजिए स्टूडियो में, हम आपकी कॉल भी एयर करेंगे और आपके विचार भी लेंगे कैनेडियन पॉलिटिक्स के ऊपर, तो हमारे साथ जुड़िए 4166201778।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨਾਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨਾਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ, 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com, QTL ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਕੇਅਰ।
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो, 3 साल ले नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
शॉपर्स, है ये तैयार लीसास कॉस्मेटिक्स फिर से लाए हैं बड़े ब्रांड्स की बड़ी सेविंग्स वाली बड़ी सेल।
जी हाँ, वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स के परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स और भी बहुत कुछ।
80% तक की सेविंग ऑन योर फेवरेट प्रीमियम ब्रांड्स।
बस आपको आना है लीसास कॉस्मेटिक्स, 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, जस्ट ऑफ हाईवे 404 एंड 407 एंड क्लोज टू 401।
सेल इज फ्रॉम अप्रैल 26 टू मई 18, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे। मदर्स डे गिफ्टिंग का भी एक्सेलेंट मौका। विजिट leesascosmetics.com।
घर तक पैसे भेजना कभी आसान नहीं रहा है, आपके हाथों से इंडिया में बैठे आपके अपनों तक सिर्फ कुछ टैक्स के साथ। जी हाँ, जब आपकी फैमिली को हो आपकी सबसे ज्यादा जरूरत, तब टैप टैप सेंस देता है आपको ग्रेट कम्पेटिटिव एक्सचेंज रेट्स। ना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स की चिंता, ना कोई हिडन फीस का डर, जस्ट हमारा इजी टू यूज ऐप और पैसे सीधा घर।
डाउनलोड आवर ऐप एंड यूज प्रोमो कोड Radio20 टू गेट एन एडिशनल $20 ऑन योर फर्स्ट सेंड ऑफ $200 और मोर। टैप टैप एंड सेंड।
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना।
कोई बात सादा सी है, हमारे पास दो गाड़ियाँ और एक घर है, और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह,
6472903773 6470 AM लोकल नंबर 6478724900। कौन कहता है